नमस्कार, आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करेंगे। पुस्तक का नाम है परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी, और इसमें भी हम एक खास अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे, मूर्तिमान शक्ति सत्ता का अनंत अभिनंदन। तो हमारा मकसद है कि इस अध्याय में नारी का जो स्वरूप है, जो महत्व बताया गया है, उसे थोड़ा गहराई से समझें। देखिए, इस अध्याय का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि नारी असल में पर ब्रह्म की, मतलब परम सत्ता की एक साकार सृजन शक्ति है, ईश्वर की क्रिएटिव एनर्जी का जीता जागता रूप।
क्या बात है!
यह अध्याय बताता है कि नारी जन्म के साथ ही वो सारी सृजनात्मक क्षमताएं लेकर आती है जिनसे समाज आगे बढ़ता है, मतलब एक तरह से प्रकृति का चलता फिरता वरदान।
और इसको समझाने के लिए ना एक बड़ी सुंदर उपमा है कल्प वृक्ष की। हमने सुनाई है कि कल्प वृक्ष के नीचे सब मिलता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वंदनीय माता जी कहती हैं कि नारी भी बिल्कुल कल्प वृक्ष जैसी है। वो पिता के मन में वात्सल्य जगाती है, भाई के जीवन में पवित्रता लाती है,
पति को पूर्णता देती है, और संतान के लिए तो वो प्राणों का आधार ही है। और ये कमाल की बात है, कैसे एक नगण्य से जीवाणु को वो एक दिव्य मानव शरीर में बदल देती है। ये उनकी सृजन शक्ति का चमत्कारी तो है।
हाँ, और इसमें एक पहलू है जो अक्सर शायद हम नजरअंदाज कर देते हैं। पुस्तक में कहा गया है कि हम मनुष्य, स्त्री और पुरुष दोनों जो भी जीवन में पाते हैं ना, उसकी आधी से ज्यादा संभावना वो बीज रूप में हमें माँ के अनुदान से ही मिलती हैं। जरा सोचिए, हमारे गुण, कर्म, स्वभाव, ये सब माँ से मिले बीज हैं, और यही फिर बाहरी जीवन में, मतलब सेहत, शिक्षा, टैलेंट, धन दौलत के रूप में दिखते हैं। और बात सिर्फ बाहरी चीजों की नहीं है, हमारी जो अंदर की दृष्टि है, हमारी श्रद्धा, हमारी ऊंची आकांक्षाएं, जो हमें एक साधारण इंसान से महान बनाती हैं, नर से नारायण बनने की तरफ ले जाती हैं, ये भी उसी अनुदान का हिस्सा है। तो ये एक तरह से दोहरे अनुदान हुए, बाहरी और भीतरी, उभय पक्षीय अनुदान जिन्हें कहा गया है। और ये माँ के रूप में नारी से लगातार मिलते रहते हैं। ये कोई आम छोटी बात नहीं है, ये जीवन का आधार है।
वाकई ये तो बहुत गहरी बात है। हम कहते तो हैं कि माँ से गुण मिलते हैं, पर शायद उतना गहराई से सोचते नहीं। लेकिन ये सोचना कि हमारी पूरी क्षमता का आधा हिस्सा बीज रूप में माँ से आता है, बाहरी भी और भीतरी भी, ये तो नारी की भूमिका को एकदम अलग लेवल पर ले जाता है। ये सिर्फ एक भावनात्मक रिश्ता नहीं, बल्कि अस्तित्व का आधार जैसा लगता है। अच्छा, तो पुस्तक में कल्प वृक्ष के अलावा कोई और उपमा भी है?
बिल्कुल, एक और महत्वपूर्ण उपमा दी गई है कामधेनु की। जैसे कामधेनु सारी इच्छाएं पूरी करने वाली, पोषण देने वाली गायें है ना, वैसे ही नारी को सत्य, शिव और सुंदर कहा गया है, मतलब सत्यता, कल्याण और सौंदर्य का स्रोत। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि नारी के इन्हीं दोहरे अनुदानों से, बाहरी और भीतरी, इन्हीं से ये संसार जिसमें स्त्री पुरुष दोनों है, कृतार्थ होता है, मतलब धन्य होता है, सफल होता है। और अगर हम इसे अध्याय के शीर्षक से जोड़कर देखें, मूर्तिवान शक्ति सत्ता का अनंत अभिनंदन, तो बात एकदम साफ हो जाती है। वंदनीय माता जी नारी को ब्रह्म की, उस परम शक्ति की एक डायरेक्ट, एक प्रत्यक्ष, सशक्त अभिव्यक्ति मान रही हैं। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जीती जागती दैवीय शक्ति है, और इसीलिए उस शक्ति स्वरूपा के लिए पूरी श्रद्धा के साथ अनंत काल तक नमन और अभिनंदन व्यक्त किया गया है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये उस दिव्य शक्ति की पहचान है, स्वीकृति है।
तो कुल मिलाकर ये अध्याय नारी को सिर्फ एक बायोलॉजिकल या सोशल रोल में नहीं देख रहा, ये उसे एक मौलिक, एक डिवाइन क्रिएटिव फोर्स के रूप में स्थापित कर रहा है, जिसका योगदान व्यक्ति, समाज और शायद सृष्टि के निर्माण में भी असीम है। ये केवल भावनाओं की बात नहीं, बल्कि एक तरह से तात्विक या कहें कि आध्यात्मिक सच्चाई बताने की कोशिश है। कल्प वृक्ष और कामधेनु जैसी उपमाएं इसी को दर्शाती हैं।
बिल्कुल, और यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण विचार सामने आता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वंदनीय माता जी ने इस अध्याय में नारी की भूमिका और क्षमता का जो इतना उन्नत, इतना शक्तिशाली दृष्टिकोण रखा है, अगर हम इसे सच में समझें, इसे आत्मसात करें, तो हमारी जो मौजूदा समझ है सामाजिक भूमिकाओं या व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में, उस पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या ये हमें रिश्तों को, समाज को और खुद को एक नई नजर से देखने पर मजबूर नहीं करेगा, जैसा इस पुस्तक में कल्पना की गई है? ये वाकई गहरा चिंतन का विषय है।